शांति। राजयोग की प्रयोगशाला जो 30 एपिसोड थे उसका आज अंतिम चरण है। यहाँ जो हमने प्रयोगशाला किए और कर रहे हैं तो यहाँ के लिए तो भले समाप्त होकर दूसरी सीरीज शुरू होने वाली है, परंतु हमारी जीवन में प्रयोगशाला चालू रहे जब तक शरीर में सांस है, जब तक हम ब्राह्मण जीवन में हैं, जब तक संगम युग है, प्रयोगशाला के अंदर ही हम हैं रहेंगे। आज की साकार मुरली से इस प्रयोगशाला की ओर जाएंगे। वास्तव में दुनिया में देखा गया है बहुत सी प्रयोगशालाएं हैं। स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्कूल में भी सहज रीति से समझ आने के लिए, बुद्धि में बिठाने के लिए बच्चों को प्रयोगशाला में प्रयोग कराते हैं। और जब प्रयोगशाला में बच्चे प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग को देख के सीख के करके उनकी बुद्धि में छप जाता है। उसी तरह अन्न शुद्ध है कि नहीं, भोजन खाद्य पदार्थ शुद्ध है कि नहीं, उसके लिए भी लैब होता है, प्रयोगशाला होता है। मसाला शुद्ध है, घी शुद्ध है, दूध शुद्ध है कि नहीं, अनाज जो है एक्यूरेट सही अनाज है, खाने योग्य है कि नहीं, उसके लिए भी प्रयोगशाला होते हैं संसार में। उसके बाद में मेटल को जांचने के लिए, मेटल शुद्ध मेटल है, 100% प्योर सोना है, चांदी है कि नहीं, जो बर्तन हम यूज कर रहे हो, बर्तन भोजन खाने पीने रखने योग्य है कि नहीं, उसके लिए भी मेटल को जांच करने के लिए प्रयोगशाला होता है। उसी तरह हॉस्पिटल में मरीजों की बीमारी को पता लगाने के लिए और पता लगा के उनकी इलाज के लिए, सही इलाज कर सके उसके लिए हॉस्पिटल के अंदर में ही प्रयोगशाला होते, पैथोलॉजी होती है। हॉस्पिटल के प्रयोगशाला में, पैथोलॉजी में जो जांच करते हैं खून की, पेशाब की, कफ की, स्टूल की, उसके अंदर में खाली पेट भी लेना होता है, खाली पेट के बाद भी लेना है, तो कोई ऐसी जांच है जो खाली पेट ही लेना होता है सैंपल को, कोई ऐसी जांच है जो जल्दी थोड़े समय के बाद ही रिपोर्ट आ जाती है, कोई ऐसी जांच है जो 24 घंटा 48 घंटा 72 घंटा के बाद भी आता है। तो जो हम राज्यों की प्रयोगशाला करते हैं, उस प्रयोगशाला में हम ये अगर चाहेंगे कि हमने अभी प्रयोग किया और अभी का अभी हमें रिजल्ट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। जैसे उस प्रयोगशाला में 48 घंटा 72 घंटा लगता है, ऐसे इस प्रयोगशाला में कई दिन कई महीना भी लग सकता है। हमें प्रयोगशाला करके धीरज से रहना होगा। वैसे संसार में बहुत से साइंटिस्ट, बहुत से वैज्ञानिक हुए हैं, उन्होंने अपने संघर्षमय जीवन से, अपनी पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपनी शोध से, अपनी प्रयोगशाला से बहुत कुछ इस संसार, समाज के लिए, देश के लिए दे के गया है। उसमें से आज हम एक व्यक्ति को हम याद करते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन, जिनका नाम आप सब सुने होंगे। थॉमस अल्वा एडिसन, अमेरिका के में उनका जन्म हुआ था। थॉमस अल्वा एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था। एक दिन जब स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे तो स्कूल में उनके टीचर ने उनके हाथ में एक लेटर दिया और बोला, ये लेटर आप अपने मम्मी को देना। और थॉमस जो है वो लेटर खुद नहीं पढ़ा, इतना ईमानदारी से ला के अपनी मम्मी को हाथ में दिया। और मम्मी जब उस पेपर को, लेटर को पढ़ी तो चेहरा उदास हो गई मम्मी को, मम्मी का। तो मम्मी ने देखा, नहीं, थॉमस ने देखा मम्मी के चेहरा उदास हो गई। तो थॉमस पूछ रहे कि क्या बात है, क्या है लेटर में जो आपकी चेहरा उदास हो गई। मम्मी कहती, कुछ नहीं बेटा, बहुत अच्छा लेटर लिखा है टीचर ने। तो बोला, मुझे पढ़ के सुनाओ। थॉमस अल्वा एडिसन की माँ पढ़ के सुनाती है कि आपकी बेटा जीनियस है, बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, बहुत होशियार है। आपकी बेटा के पढ़ने के लिए, पढ़ाने के लिए इस स्कूल में लायक टीचर नहीं है। कृपया आप अपने बेटा को दूसरे स्कूल में, कोई अच्छे स्कूल में एडमिशन करा के पढ़ाए तो अच्छा होगा, यहाँ पे आपकी बेटा की टाइम वेस्ट होगा। और उनकी मम्मी, थॉमस अल्वा एडिसन की मम्मी, कि उनके घर में कुछ शोध के रसायन की बुक होता है और बुक पढ़ने के लिए देता है, उनको प्रोत्साहित करता है थॉमस अल्वा को। और वो प्रोत्साहित करते करते उसमें इंटरेस्ट बढ़ जाता है। और थॉमस अल्वा एडिसन बताते हैं उनके जीवन में 10,000 से अधिक बार वो असफल हुए, और 10,000 बार असफल होने के बाद भी एक दिन वो बल्ब का निर्माण किया। उनके जीवन में बताते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन के जीवन में एक बार ट्रेन से यात्रा कर रहे थे, कुछ केमिकल्स, कुछ रसायन लेके चल रहे थे वो। और जब कुछ कारण बनी, वो केमिकल्स गिर गए बोगी के अंदर, और गिरने के बाद में आग लग गया। जब टीटी को पता चला कि इनके कारण, इनके केमिकल्स गिरने से ट्रेन में आग लगी, तो उनको अच्छी तरह धुलाई किया। और ऐसे धुलाई करते करके एक जो थाना झापट उनके कान के में लगा, और कान में लगने के कारण से वो कम सुनने लग गया। थॉमस अल्वा एडिसन उस कम सुनने को भी वरदान समझा कि हम बाहर की बात नहीं सुनेंगे तो हमारी मन जो है जल्दी एकाग्र हो जाएगा। और थॉमस अल्वा एडिसन बताते हैं कि उन्होंने अपने जीवन काल में 1879 से लेकर 1900 तक के बीच में उन्होंने सारी रिसर्चेज कर दी, 1,000 से भी अधिक रिसर्च किए हैं, शोध किए हैं। नहीं, 1900 तक उन्होंने 1,000 से भी अधिक प्रयोग से 1,000 से अधिक चीज़ के आविष्कार किया है। उनका कहना था, उनके जीवन का लक्ष्य था कि जीनियस जो व्यक्ति होता है, जीनियस व्यक्ति 1% प्रेरणा से काम करते हैं और 99% प्रयास करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं। उसके बाद में बताते हैं कि उनकी मम्मी शरीर छोड़ दिया कुछ कारण से, कुछ काम से। थॉमस अल्वा एडिसन अल्मीरा को कुछ ढूंढने के लिए खोजते हैं, और जब अल्मीरा को ढूंढने लगते हैं तो देखते हैं कि वो लेटर पड़ा है। जब लेटर देखते हैं तो सोचते हैं, पढ़ता हूँ क्या लिखा है, जब पढ़ता है तो उसमें लिखा रहता है कि आपका बेटा इतना डल बुद्धि है जो हम अपने स्कूल में आपके बच्चा को रख के टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं, कृपया आप अपना बच्चा को घर में ही रखिए और पढ़ाइए। संसार के हिसाब से हम भी क्या है, साधारण है, अनजान है, अनपढ़ है, बुद्धू है, कुछ भी समझते नहीं है, परंतु हमारी ब्रह्मा माँ की नज़र में, शिव बाप की नज़र में हम महान है, हम जीनियस है, हम होशियार है, हम आविष्कारक है। तो इस राजयोग की प्रयोगशाला में हम ऐसे प्रयोग करके, वो अगर 10,000 बार प्रयास करके भी हिम्मत को नहीं हारा, मनोबल को कम नहीं किया, थॉमस अल्वा एडिसन को पूछा गया कि आप इतना बार असफल हुए फिर भी प्रयासरत कैसे रहे, क्यों रहे, आपका मन में छोटा नहीं हुआ? थॉमस अल्वा एडिसन कहते हैं कि हमने समझा ये तरीका नहीं है, दूसरा तरीका है, ये नहीं करो दूसरा करो, तो हमको तो और सीखने को मिला, हमें भी हिम्मत हारना नहीं है, क्योंकि उनके पास तो न बाप था, परमात्मा का ज्ञान था, न परमात्म शक्ति था, हमें तो परमात्मा का भी ज्ञान है तो परमात्म शक्ति भी हमारे साथ है। आज की साकार मुरली में प्यारे बाबा ने कहा है कि अगर तुम्हें विश्व की बादशाही लेनी है तो तुम्हें पढ़ाई भी पढ़नी है और पावन भी बनना है। पढ़ाई पढ़नी है, बाबा जो पढ़ाई पढ़ाते पढ़नी है और पावन बनना है, अर्थात ब्रह्मा की जो आचरण है, ब्रह्मा की आचरण को अपने आचरण में उतारना है। ब्रह्मचर्य नहीं, ब्रह्मा की आचरण, ब्रह्मा बाबा के चलना, बाबा के बोलना, बाबा के करना, बाबा के देखना, बाबा के सुनना, बाबा के सोचना, उसको अपने जीवन में लाएंगे तभी हम क्या बनेंगे, पावन बनेंगे। पावन बनेंगे और दिल से पढ़ाई करेंगे, जैसे बाबा को मुरली से वो सबसे ज्यादा प्यार थी ब्रह्मा बाबा को, वैसे हमें भी मुरली से प्यार होना चाहिए। जैसे बाबा की मुरलीधर से प्यार थी, वैसे हमें भी मुरलीधर से प्यार होना चाहिए, तभी हम विश्व के बादशाही के लायक बन सकते हैं। बाबा ने प्रश्न में पूछा है कि बाप के एकुपेशन क्या है जो दुनिया वालों को पता नहीं है। बाप का एकुपेशन है, बाप हमारा टीचर है, बाप है और सतगुरु है। बाप बन के हमें अमृत वेला क्या करते हैं, अच्छी अच्छी माल पानी खिलाते हैं, गरम गरम हलवा खिलाते हैं, घी पिलाते हैं, ताकतवर बनाते हैं। टीचर बन करके हमें बाबा पढ़ाई पढ़ाते हैं। 2 दिन पहले की मुरली में थी ना कि हिस्ट्री की नई हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं बाबा। गवर्नमेंट भी चाहते, एजुकेशन मिनिस्टर भी चाहते हैं कि नई हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी हो। बाबा हमें बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान सुनाते हैं। हम कौन है उनकी ज्ञान देते, दुनिया वालों किसी ने नहीं दिया कि तुम आत्मा हो। और सतगुरु बनकर के हमें सत्य मार्ग पर चलना सिखाते हैं, सत्य बोलना सिखाते हैं, सत्य सोचना सिखाते हैं, सत्य व्यवहार करना सिखाते हैं। तो हमें बाप बन के, टीचर बन के, सतगुरु बन के हमें पालना करते हैं। ये इसी समय में होता है। बाबा ने ओम शांति का अर्थ भी बताया। ओम शांति का अर्थ बाबा ने बताया कि मैं अर्थात मैं आत्मा, यह मेरा शरीर, और मैं आत्मा शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, शक्ति स्वरूप, मौन स्वरूप, एकांत स्वरूप आत्मा हूं। जैसे आत्मा कहती है अपने शरीर के लिए मेरा शरीर, वैसे शरीर भी कहती है मेरी आत्मा। इस उलझन को मैं जब मुरली पढ़ा तभी मेरे को समझ में आया, नहीं तो हम बार बार कहते थे कि शरीर तो कभी हमारे मुंह से निकलते मेरी आत्मा, लेकिन मैं कहता जब मैं आत्मा हूं तो मेरी आत्मा क्यों निकलना चाहिए। इसका अर्थ है कि मेरी अवस्था उतना अच्छा नहीं है कि आत्मा को भी मेरी कहता हूं। लेकिन कल बाबा ने हमारी बुद्धि को खोल दिया कि हमें समझ में आया कि जब शरीर को कह सकते हैं मेरी शरीर, तो शरीर का भी तो अधिकार है आत्मा के ऊपर। इसीलिए आत्मा कहती है मेरा शरीर और शरीर कहती मेरी आत्मा। बाबा कहते हैं सत्युग में आत्मा 100% प्योर होती है, सच्चा सोना होती है। कलयुग में आत्मा 100% इम्प्योर बन जाती है। सोना की बात नहीं है उनमें, आत्मा के अंदर में शुद्धता की बात है और आत्मा के अंदर में अशुद्धता की बात है। सत्युग में 100% पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, कंचन होते हैं। बाबा ने मुरली में बताया है कि बच्चे हर चीज की तीन अवस्था है होती है, बाल, युवा और वृद्धा। वैसे इस सृष्टि की भी तीन अवस्था है, बाल, युवा और वृद्धा। अभी सृष्टि के वृद्धा अवस्था के भी अंतिम अवस्था में है सृष्टि। अभी क्या किस पे चल रही, वेंटिलेटर पे भी उनका जो है पैरामीटर नीचे ऊपर हो रहा है, कब क्या होगा पता नहीं चल रहा है। इसीलिए समय की भरोसा नहीं है, जो करना है अभी हमें कर लेना है। हमें कल के लिए कुछ भी छोड़ना नहीं है, पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, समय कितनी। सत्व प्रधान जब अवस्था होती है आत्मा की, सत्व प्रधान अवस्था में दुनिया भी सुधरी हुई होती है तो आत्मा भी सुधरा हुआ सुधरी हुई होता है। तमो प्रधान अवस्था में आत्मा की अवस्था भी बिगड़ी हुई होती है तो दुनिया की स्थिति भी बिगड़ी हुई होती है। इतना अभी से हम पुरुषार्थ करते हैं संगम में, बाबा हमसे पुरुषार्थ कराते हैं, इतना हमें बाबा शक्ति देते हैं, उस शक्ति से हम सत्युगी त्रेता युग में हमारी बुद्धि सुधरी हुई रहती है। प्रकृति के पांचों तत्व की अवस्था सुधरा हुआ रहता है। अभी ऐसी अवस्था हो गई है कि प्रकृति के पांचों तत्व की अवस्था अस्त व्यस्त हो गया है, तो हमारी बुद्धि भी अस्त व्यस्त हो गई, हमारी अवस्था भी अस्त व्यस्त हो गए हैं। बाबा ने मुरली में बताया है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सी बाबा है और ऊंचे से ऊंचे भगवान, उनका नाम एक्यूरेट सी बाबा है। रुद्र सी बाबा नहीं कहते हैं, रुद्र बाबा नहीं कहते हैं, शोभता है शिव बाबा। और रुद्ररात्रि नहीं कहा जाता है, शिवरात्रि ही कहा जाता है। शंकर की रात्रि नहीं कहते हैं, शिवरात्रि ही कहा जाता है। चल रे कमरिया रुद्र के धाम नहीं कहते हैं, शिव के धाम ही कहते हैं। सावन मास में सत्युग में जो होते हैं, जो बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म लेने से पहले गर्भ में रहता है, गर्भ महल में रहते हैं, वहाँ पे बच्चा को सुख होता है, आत्मा सुख में रहती है, चैन में रहती है, शांति में रहती है। वर्तमान समय कलयुग में आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती हैं तो अपने आप को जेल में महसूस करते हैं। जेल में महसूस करने के कारण से दुख और अशांत पीड़ा का महसूस करते हैं, और दुख अशांत पीड़ा के महसूस करने के बाद में अपने को अंजाम करते रहते कि हे प्रभु हम आगे से ऐसा गलती नहीं करेंगे, हमें यहाँ से निकालो, हमें मुक्त कीजिए, हम आज से ऐसा गलती नहीं करेंगे, हम आपसे प्रतिज्ञा करते हैं, हम वादा करते हैं। लेकिन बाहर निकलने के बाद में भूल जाते हैं वहाँ के क्या प्रतिज्ञा वहाँ की वहाँ रही। हम बाबा के जब मानते हैं तो बहुत सी प्रतिज्ञा करते हैं, बहुत ही कठोर कठोर संकल्प, बहुत 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 ही महान संकल्प लेते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा बनेंगे वैसा बनेंगे, बाबा मम्मा समान बन के दिखाएंगे। लेकिन चलते चलते हम भूल जाते हैं। तो अभी इसी समय हम प्रतिज्ञा को दोहराएंगे, संकल्प लेंगे, वो भी यहाँ नहीं सूक्ष्म बतन में जाके। तो थोड़ी देर के लिए सभी जने खड़े हो जाएंगे। ओम शांति। हमें कोई करा नहीं रहा है, हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, इस संकल्प से करेंगे। ओम शांति।
दृढ़ कुटी तख्त में विराजमान मैं आत्मा, ब्राह्मण जीवन को सशक्त मजबूत बनाने के लिए बाबा से जो की हुई प्रतिज्ञा है उसको दृढ़ करने के लिए मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर सूक्ष्म शरीर धारण कर इस हॉल से बाहर निकल ओम शांति भवन के आगे खड़े होकर ऊपर की ओर जा रहा हूं। ऊपर की ओर जा रहा हूं, ऊपर आकाश को देखते हुए ऊपर की ओर जा रहा हूं। मैं आत्मा नीचे देखते ऊपर की ओर जा रहा हूं। नीचे की वस्तु, नीचे की पहाड़ी, नीचे की मकान छोटा दिखाई दे रहा है, ऊपर की ओर जा रहा हूं। जाते 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 आकाश की भी पार सुनहरे प्रकाश की दुनिया जहां पे स्वयं ब्रह्मा बाबा विराजमान है उनके समक्ष पहुंच गया। बाबा से नैन मुलाकात करते दृष्टि लेते शक्ति भर रहे हो। बाबा पूछ रहे हैं बच्चे कैसे आना हुआ, मैं कह रहा हूं बाबा आज मैं आपके पास अपने की हुई आपसे प्रतिज्ञा को दृढ़ता का जरूर करो। बाबा के साथ मम्मा भी है, एडवांस पार्टी की हमारे मुख्य दादी मुख्य भाई भी है। मैं प्रकृति के पांचों तत्वों को भी आह्वान कर रहा हूं, पृथ्वी आकाश वायु अग्नि जल सब समक्ष पहुंच गए हैं और मैं शिव बंसी ब्रह्मा कुमार आशीष भाई दाएं हाथ आगे करके प्रतिज्ञा करता हूं कि बाबा आपने जो मुझे जन्म दिया है, आपने मुझे जिस कार्य के लिए नियुक्त बनाया है, आपने मुझे जिसके लिए चुना है, उस कार्य के लिए मैं सदा तटस्थ पर बीसों नाखून का जोर लगा के जब तक संगम युग है, जब तक इस शरीर में श्वास है, तब तक करने के लिए तैयार हूं, करता ही रहूंगा बाबा, कभी भी पैर पीछे नहीं मुड़ूंगा। मैं ब्रह्मापुत्र शिव वंशी, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, मातेश्वरी जगदम्बा, प्रकृति के पांचों तत्व को मैं साक्षी होकर सुगंध खा रहा हूं। सदा यज्ञ रक्षक बन के रहूंगा, सदा आज्ञाकारी वफादार बन के रहूंगा, सदा आज्ञा का पालन करता रहूंगा। और मुझ इस प्रतिज्ञा को सुन प्यारे बाबा, प्रकृति के पांच तत्व, मम्मा, एडवांस पार्टी मुझ पर बहुत खुश हो रहे हैं। और बाबा हमें हमारे सिर पर वरदानी हस्त रखते हैं। बच्चे आप अपने संकल्प में सफल अवश्य होंगे, बाप दादा साथ है कह के वचनबद्ध हो रहे हैं। और बाबा के वरदानी हस्त सिर्फ अनुभव करते करते मैं सूक्ष्म वतन से नीचे की ओर आ रहा हूं। और मैं अपने शरीर में प्रवेश कर चुका हूं। ओम शांति।